अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुदरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामां चरणम् सवेरे हम लोग श्री श्रील गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज के अत्यंत पवित्र चरित्र के संबंध में हम लोग कुछ विचार कर रहे थे। मैंने उनके जीवन चरित्र पर एक विहंगम दृष्टि डाली और तुम लोगों में से कोई बोलना चाहता है तो बोल बे बोलो।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्वर गुरुपाद प्रतिपाव नृत्यामेश्वरामेश्वराम
राधे राधे बोला कीर्तन करते
इसलिए जिहा पवित्र आदि करने के लिए उनकी अकाट जीवन चित्र पर सामान्य कोशिश करने के प्रयास करता हूँ। हम लोग महाराज के मुखारविंद से उनके अकाट जीवन चरित्र प्रथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री महाराज के विशिष्ट उन्हीं विशिष्ट थे मैं कुछ ग्रहण करना चाहता हूँ। महाप्रभु गौरव वैराग्य प्रधान जहाँ देखी कृष्णवान गौरव भगवान महाप्रिय इतने कौन है उनके देखते हैं ये वैराग्य किस प्रकार है और वो वैराग्य देख करके सर महाप्रभु भी कैसे प्रसन्न होते रूप सनातन के वैराग्य से देख करके रघुनाथ दास के वैराग्य से देख करके महाप्रभु कैसे प्रसन्न होते उसी प्रकार उसी कड़ी में देख रहे गोविंददास बाबाजी महाराज के लिए वैराग्य एक अतुलनीय और अमृत प्रसन्न है। रघुनाथ जी वैराग्य जनों पसंद है उसी प्रकार गोविंददास बाबाजी महाराज के वैराग्य है उसी प्रकार पासन के रिकॉर्ड में से एक लिखित अर्थात रेखा भेज दिया जाते हैं और वो भी वीर का नहीं है ठीक उसी प्रकार गोविंददास बाबाजी महाराज की वैराग्य उसी प्रकार भजन आदि करते थे हम उनकी शिक्षा देते हैं विषय जन्म खाए मोहि भाए मोहन मोहि मोहि कृष्ण नामय स्मरण गोविंददास बाबाजी महाराज अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु की यह वाणी के ऊपर अपने स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा दी जी विषय अन्य विषय लोगों के द्रव आदि ग्रहण कर ले किस प्रकार चित्त रिमोट हो जाए ये निम्न कैसे चित्त कैसे मोहित हो जाता है मतलब दिखाया एक बार कोई व्यक्ति उनको एक रेलाई दे दिया गत्ता दे दिया ठंडी के समय में रुक के गोविंददास बाबाजी महाराज रोज दिन में गत्ता के घाट पर एक नाव के छाए ऊपर रहते थे और ये ठंडी कड़ी छपी ठंडी और मौत नहीं है उनके पास कोई ऐसे रेलाई कुछ नहीं था कोई एक व्यक्ति उनके रेलाई दे दिया गत्ता दे दिया और उन्होंने क्या करते जो रेलाई के तहत वो नाव के ऊपर रख दिया अपने शरीर को नाव लपेट नहीं दे और किसी व्यक्ति ने कहा बाबा जी महाराज आपने सुंदर रेलाई दे दिया ये रेलाई को आप और दे दीजिए और वो नाव के ऊपर छत पर क्यों रख दिया बाबा जी महाराज कहने लगे देखो ये रेलाई को देखने से ही मेरा क्या सोच है ये विषय जैसा बीज कैसे रहता है इसी प्रकार जगत में शिक्षा दे रहे विषय की अन्न विषय के वस्त्र आदि दान आदि ग्रहण करने से किस प्रकार हम इस धर्म को प्रसिद्ध कर सकते हैं जगत में इसको दिखाया अधिकारी जन उन लोगों का भक्त जन वो सब विषय के वस्त्र के वो बीच के हजन कर सकते हैं जगान जो अति विषम सीधी जो महाभारत उस विषय के वस्तु के भगवत सेवा में लगा करके बाप अपने भजन के दौर के द्वारा उसको तो बीस को जो है जला सकते हैं किंतु महाधिकार व्यक्ति वह विषय को जला नहीं सकते हैं और उसमें वो अपने ही उसमें लग जाएंगे और धीरे धीरे विषय की भोग लालसा भी बढ़ते जाएगा आज करता जाइए काम और कुछ भी चाहिए ऐसे करके धीरे धीरे और संसार भी फंस जाएंगे विषय की तरफ से दूर रहना चाहिए और ऐसी वैराग्य किस प्रकार से आसाधन करना है यह बाबा जी महाराज अपने जीवन में आदर्श करके दिखाया श्री महाराज जी कि हम लोग जो महाराज जी पार होते थे वो ये सात आदतों को करने कितने साल हमारे पास की है क्या होता है उस समय महाराज जी के साल होते साल को देते थे मान के नहीं कोई ब्रह्मचारी साल और नहीं करेंगे सौ है ना कोई ब्रह्म नहीं करेंगे तेरी करके
जो पैसा रखेगा वो जरूर मरेगा खबरदार सन्यासी ब्रह्मचारी मठ के रहने वाले एक पैसा भी मत रखना उसमें विष लगा हुआ है तुम लोग हजम नहीं कर सकते और नहीं तो विवाह करके फिर संसार में जाना पड़े ये समझ रहे हैं
संसार में जाने श्री महाराज जी इसी प्रकार कृष्ण जी गोविंद मठ में हम लोग के अपने
बार भी दे।
हाँ एक बार तो ही हुआ भी तो हमने अगर तुम लोगों ने काम करना चुला ये सब गुरु महाराज जी मात्र रूप में वैराग्य की शिक्षा देते थे। रूप स्वयं और रूप गोस्वामी ने वैराग्य आदि बार बार प्रवचन करते गौरवनाथ गौरी महाराज के जीवन चरित्र बार बार श्रवण कराते थे। इसलिए आदर्श दिखा गौरवनाथ स्वामी महाराज। दूसरी बात गौरवनाथ स्वामी महाराज कोई एक व्यक्ति आकर बोले महाराज मैं नवद्वीप में 5 कठा जो है जमीन खरीद लिया। बाबा जी महाराज सुनते ही कह रहे तुम्हें नवद्वीप में 5 कठा जमीन खरीद लिया अरे एक धुरी करा नवद्वीप के धुन धुन एक धुन भी कोई खरीद नहीं सकते। जिसके श्रीलंक ने श्रवण करा दे
only she's imitating the sound of giving birth. In the
the same way you are only imitating the sound of bhajan without having any bhajan at all. Therefore, you should give up your duplicity, surrender to the feet of the Vaishnavas, and under the guidance of the Vaishnavas, you should do bhajan, then you will achieve some auspiciousness. One time there was another devotee called Jagodara Das, so he claimed to see Babaji Maharaj also. So sometimes Babaji Maharaj would also let him cook for him sometimes. Then Babaji Maharaj, you know, all Babaji Maharaj also gave him permission to collect the donations that were given on behalf of Babaji Maharaj. Then one time the father-in-law of Damodar Das came from Orissa. Then Damodar Das, he took some of that money and gave it to his father-in-law. So Sri Gaurakrishnadas Babaji Maharaj is omniscient. Some people say Gurudev is not really Chikalikya. He doesn't know anything. But Sri Gaurakrishnadas Babaji Maharaj could understand he has stolen money. Then Sri Gaurakrishnadas Babaji Maharaj, he refused to touch anything touched by that Damodar Das. So even he was so disturbed, Sri Gaurakrishnadas Babaji Maharaj went to the Ganga to commit suicide. He said, if this hypocrite does not leave my association, I will go there and kill myself. So Sri Babaji Maharaj went to the Ganga and jumped in the Ganga to kill himself. That time all the local people who were on the shore of the Ganga, they took Babaji Maharaj and by force tried to bring him to the bank. But he was shouting, oh that man, oh better I should die, because that Damodar Das has stolen everything I have. Then the local people said, don't worry Babaji Maharaj, whatever he has stolen, we will return to you 4 times the amount. Because they thought that Babaji Maharaj was attached to money. The Babaji Maharaj said, I am not crying for my money. I am crying because I am in association with that hypocrite, who in the name of the service of Gauranga has taken things for his own sensual enjoyment. So Srila Babaji Maharaj, today we are in the room reading his life history, really he's like a walking thunderbolt against hypocrisy. One time there was one Goswami who would make his living traveling around Bengal. Then one time in the middle of the night, Babaji Maharaj woke up shouting, Jassi, look what that lecturer is doing. He's going to the house of a widow and having sexual relations there. Alas, Mahaprabhu has shown me his true character. So Babaji Maharaj is the manifestation of the Paramatma. He knew everything. His character was very, very extraordinary. So many wonderful teachings are there.
Translation of
one. One more thing, Prabhupada Bhagavan said. One time, one Babaji came to Gaurakrishnadas Babaji Maharaj and said, oh Babaji Maharaj, I have acquired a quarter of an acre of land in Nauwit. Then Babaji Maharaj said, how astonishing. All the wealth in the 14 worlds cannot buy one grain of dust in Nauwit, and you've managed to accumulate a quarter of an acre. And that Babaji Maharaj became ashamed. So, Because this is like poison, therefore ordinary person has no qualification to eat that. Even Gurudev would never let the brahmacharis wear those
silken cloth,
like wristwatch. Okay, we'd never let the brahmacharis wear wristwatch and nice clothes inside. Pushpad Bhagavan said, this type of teachings of Sri Gaurakrishnadas Babaji Maharaj, we saw directly in the life of Sri Gurudev.
Instinctively, he also testified to us and also his love and affection so much.
Tamal Krishna. Uthar. Anything more you want to tell?
I can tell something.
Yeah. Achha. Thank you.
Yeah.
हरे कृष्ण श्याम बिहार प्रभु और संजय प्रभु कोई भी हो गुरु जी के कमरे में टेबल के ऊपर बांग्ला पंडिता रखा हुआ है किताब के अंदर कृपया गाने का कष्ट करें। हरे कृष्ण
গোস্বামী কি ভুল ব্যাখ্যা করছেন কি ভুল ব্যাখ্যা করছেন
Radha Bhava Nishevane. He was observing
absorbed constantly in the mood of service, Radha Dasyam, which was exemplified by our Prayojan Tattvacharya Srila Raghunath Das Goswami. So in this very high state, most exalted state of transcendental consciousness, he would externally exhibit activities which were unfathomable, not understandable by the general public. And his instructions were also sometimes surprising or shocking even to the persons who would come to him. But underlying all of his instructions, he would show mercy, always showing mercy, by trying to give the proper conception. Because the neophyte devotee has a materialistic tendency always for cheating. Always there is kapatya, kutinati, deceitfulness, hypocrisy, which is invading the heart. But the pure Vaishnavas, they are always aware of these tendencies of the conditioned souls, and for their benefit, they are always trying to point out these tendencies mercifully, sometimes slashing these tendencies of hypocrisy. Like Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada described, they are holding the sacrificial sword in hand, just like sometimes when they perform Durga Puja and they sacrifice a goat or something. So the neck of the goat is lying on the chopping block, and the slaughterer is holding up his hand, and in his hand is this sacrificial sword. So what is this indicating? This is indicating that Sri Guru, with harsh words sometimes, but very mercifully, he takes his sacrificial sword, and what is the head of the animal? It is the false ego. It is the tendency for hypocrisy and cheating of the disciple, which is hampering his spiritual progress. So he takes that sacrificial sword, and he cuts off his false ego. So Srila Gaurika Shodas Babaji Maharaj was so merciful in this way. Everyone who came to him, no one could cheat him. No one can cheat the pure devotee, because he is Trikalakya. He understands everyone's heart, and he knows exactly what medicine to give them. Once there was one Bhattacharya. He was a somewhat learned person. He approached Srila Gaurika Shodas Babaji Maharaj. So please, Babaji Maharaj, I want to receive instructions on confidential practice of Ashtakaliya Lila Smara. I want that you will give me this instruction so that I can meditate upon the eightfold daily pastimes of Radha and Krishna and become absorbed in this. And Srila Babaji Maharaj answered him, "Oh, I do not have so much leisure time right now. Maybe you come back later when I have some time that I can instruct you." Then again, this man returned back another time and requested the same. Babaji Maharaj again said to him, "Oh, I don't have time now. Please come back again." Again and again, this person approached, and each time Babaji Maharaj told like this. But then finally Babaji Maharaj, this person, began to get the message, and he said, "Oh, please instruct me for my welfare then. Please tell me what I should do." And Srila Gaurika Shodas Babaji Maharaj, then he told him, he said, "If a person is attached to an ordinary coin, a little bit of money in this material world, or any kind of material possessions, how will it be possible for that person to meditate upon the eternal pastimes of the Supreme Lord? This is not an imitation process that one will simply read in a book about the Ashtakaliya Lila Smaran, and then he will try to think about this. Because by doing this, no result will be achieved, only degradation. What has happened in this world today," Srila Babaji Maharaj said, "is that so many persons, they have produced mundane literatures which are depicting Ashtakaliya Lila. We find that in Bengal, so many authors, they have written so many different concocted literatures about Radha Krishna's Ashtakaliya Lila. But Srila Babaji Maharaj said, this is simply degrading society, and it is piling up. And they are building a platform two stories high
then they are climbing up on this high platform. But what are they doing from this platform? Simply passing stool. Why? Because they have no conception. What is the actual value of this Ashtakavya Lila Smara that he told? If you want to understand these things, then you will have to come into the association of the pure Vaishnavas. You will have to chant Harinam in their association. You will have to constantly serve the Vaishnavas. Then when your heart is purified, then of course time, your Siddhadeva, your transcendental internal spiritual identity, then it will manifest. And then you will be able to properly understand what is Ashtakavya Lila Bhaja. So Srila Gaurdiya Shodas Prabhupada Maharaj always would give such beneficial instructions to people who would come to him. Another man, he came to Babaji Maharaj from Vrindavan. And he said, at that time, Babaji Maharaj, he covered himself with cloth. And also he covered his feet. And this man came to approach him. Oh, Babaji Maharaj,
yes, he has done.
Please
has
give me calendar, some instructions. And you are my, I am serving you as my spiritual master, so please give me some instructions.
Not helping.
Then yes, Babaji Maharaj said, it is better that you should go somewhere else, because I am not really a Vaishnava.
He
was covering his feet, so that no one would touch his feet. And then he said, better that you go to others. There are so many gurus who will very happily, they will extend their feet out so that you can touch their feet. And they will reward you with so many luxuries. You will be able to have very nice puris and halava. And he named so many sweet preparations, opulent preparations. These gurus, they can actually reward you. They can give you some anukul, things that are favorable for your bhaja. Like this in a sarcastic way. He was telling to this man, finally this man, he understood the message. And then, so Babaji Maharaj, please tell me then, how should I actually proceed forward? And then he said, you should eat rice which is soaked in water. That means pantabat. In Bengal, they take the rice that is cooked from the previous day, they soak it in water overnight, and then in the morning they drain off the water. It's a very, very simple way of living. And Srila Gaurdiya Shodas Babaji Maharaj, sometimes he will simply eat that. He said that you should sit on a straw mat. You should wear cloth that no one will steal. Like this, telling him you should live very simply. And you should chant Harinam in the association of the Vaishnavas. If you chant Harinam under their guidance, in their association, living in this simple way, then you can attain your ultimate benefit, what will actually be anukul for you. So like this, Srila Gaurdiya Shodas Babaji Maharaj, there are so many incidences in his life and teachings, but he is showing the position of great mercy to clearly reveal the hypocrisy that lies hidden within the hearts of the conditioned soul. And Srila Raghunath Das Goswami has written in the Manasiksha to also teach the sadhaka how he has to become free from kapatya kutinati, are chaita prodya kapatya kutinati varkara. He says that, my dear mind, you are bathing yourself in the trickling urine of the donkey, of hypocrisy and deceitfulness. And you are thinking that by bathing in this trickling urine, now you've become purified. Just see how this foolish mind is trying to see that this will be beneficial. So, Srila Gaurdiya Shodas Babaji Maharaj very kindly pointed this out. And this is the nature of the pure Vaishnavas. They do not want to see that their disciples, that those who have come to them will be cheated. Because in this age of Kali Yuga, there is the cheaters and the cheated. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said this. Simply cheaters have cheated in Kali Yuga. But the pure Vaishnavas will never cheat anyone. Not unless they want to cheat their own self, then they will simply neglect them. But if someone comes to the lotus feet of the pure Vaishnava, and they mercifully are able to approach that Vaishnava for instruction, then they should expect that in course of time he will reveal to them what are the flaws in their character, what are the flaws in their attempt to perform bhakti. And by mercifully revealing this to us, then and then only can our welfare be attained. So I remember that our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he told to us when he came to the Western countries, he said that some persons are thinking that if they go and study in the universities, oh, and they get some PhD in comparative religious studies or any of these kind of philosophical subject matters, then they will be able to do proper preaching and they will actually be able to serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. But Srila Gurudev said they will be ruined. They will be ruined because they are hearing from Mayavadis. They are hearing from atheistic persons. And by this association, they will be ruined and they will go down. And then Srila Gurudev said, I have not gone to any university myself. Only university I have gone to is the University of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj.
আমি কেবল
who was constantly exhibiting these exalted qualities of the highest Uttam Mahabhagavat. And we are also so fortunate that we have the association of our Gurudev, who is kindly and mercifully always correcting us, trying to steer us in the right direction, tirelessly, not giving up on us, and always trying to give us the wealth that is within his heart. So I'm praying at his lotus feet that today that he will bless all of us, that we can actually go on this path of bhakti and serve our Guru Parampara without any deceitfulness and hypocrisy, and that we can develop the quality of saralata, simplicity, the inside and outside being the same. Gaura Premanande,
थोड़ी सी उम्र में, छोटी उम्र में ही घर त्याग कर वृंदावन में चले आए थे ब्रज में। ख ख ब भ भी लिखना नहीं जानते थे, कुछ स्कूल में कभी नहीं गए, किंतु वैष्णवों के मुख से, विशेष करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर के संग में रहकर उनको इतना तत्व ज्ञान था कि साधारण लोगों को नहीं था। जिस समय बाबा जी नवदीप धाम में रहते थे, वहां के प्रख्यात बहुत प्रसिद्ध एक भागवत पाठक नाम प्राण गोपाल शास्त्री, उनका बंगाल भर में नाम था, किंतु वो जब भागवत पाठ कर रहे थे उसी रास्ते से बाबा जी महाराज जा रहे थे। वो पाठ कर रहे थे, गोपियों का पार्थिव भाव ब्रज गोलोक धाम में नहीं है, केवल भव वृंदावन में ही उन लोगों का पार्थिव भाव है, वहां पर वो सब समय स्वकीय है। बाबा जी महाराज गोसाई की भूल पाठ कर कांडकान न्याय गोलोक वृंदावन सह अवतरी चैतन्य चैतामित में भी दिया है और सब जगहों में दिया है कि कृष्ण अपने भावों को लेकर और अपने जितनी वहां पर पार्कीय भाव अथवा जो कुछ है सबको और अपने परिकरों को लेकर के यहां से आते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो गोलोक वृंदावन में नहीं है यहां पर बाबा जी की, वो पाठक जी की बोलती बंद हो गई, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगा। तत्व का ज्ञान और भक्ति स्कूल कॉलेज में नहीं होती, जैसा कि इन्होंने कहा वहां जब अमेरिका में था तो कुछ लोग आए, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, माने तुम्हारी दुर्बुद्धि हो गई, भक्ति राज्य से तुम लोग गिरेगा, स्कूल में जाने से तुम्हारे गुरुजी ने जो शिक्षा दी है उससे अधिक वो लोग शिक्षा नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। और पीएचडी करने से फिर घर लौट करके भक्ति में तुम लोग नहीं आएगा, नास्तिक बन जाएगा। आजकल बहुत से लोगों को है स्कोन वाले सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रपूज्य चरण बामन महाराज जी कहते थे केवल मैं ही एक बचा हूं जो स्कूल में जाकर के और फिर भक्ति में लगा। आज तक कोई भी जो स्कूल गया कॉलेज गया फिर नहीं लौटा, तो आप कैसे बच गए? तो मैं सब समय गुरु जी की सेवा वैष्णव की सेवा में रहता था इसलिए बच गया। हमने भी देखा है जो स्कूल में कॉलेज में गए फिर वो लौटे नहीं। हमारे केशव जी गौड़िया मठ में एक यहां पर आए हैं, वो मठ के ब्रह्मचारी थे, तो संस्कृत पढ़ने का लेके के लिए संस्कृत पाठशाला में गए और फिर लौटे नहीं। संसार की बात स्वीकार कर करके बाल बच्चों के साथ में नौकरी करने लगे, कहां भगवान की नौकरी करेंगे, तो माया की नौकरी करने लगे, भक्ति से गए गुल्ला। इसलिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ विद्या हमारे पास में है वही यथेष्ट है, जो कुछ पढ़ करके लिख करके आया है नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, सिद्धांत श्रवण करो वैष्णवों के साथ में और उससे तुमको समस्त जितने तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान हो जाएंगे और साथ ही साथ में भगवान की प्रेमा भक्ति भी हो जाएगी। गौर प्रमानंदे
at a very young age came here to Vrindavan and performed his bhajan. Externally seems he had no education, even he could not write his name, but he had all Siddhanta was with him. One time in Bengal there was one Goswami named Pranagopal Shastri. He was very very learned, but one time he was giving a lecture. And that time Sri Gaurakasharas Babaji Maharaj was walking past. Prabhupada Shastri was saying, in Goloka Vrindavan there is no Parakya Ras, there is only Swakya Ras, the married relationship between Krishna and the gopis. But when Krishna comes to this world, that Parakya Bhava is manifested only here. Then Sri Gaurakasharas Babaji Maharaj chastised him, what rubbish you are speaking? And he explained how when Sri Krishna comes from the Dham, he brings all his associates with their original gurus here also. There is no difference between Goloka Dham and this Vrajabhumi. What is not there will not be here also. So that Goswami, he fell at the front of Pal Shastri, he fell at the feet of Sri Gaurakasharas Babaji Maharaj, begging forgiveness. So Guru used to say, we have only come to study at this University of Sri Gaurakasharas Babaji Maharaj. When Guruji went to America the first time, then all the learned persons of ISKCON, don't mention any names, they came to Sri Gurudev. They were going to college and universities to do their PhD, etc. Guruji said, don't think you will learn anything more from them than you have received from your spiritual master. Your spiritual master has given the topmost instructions. If you hear from these university academies, who are also atheists, you will be diverted and your bhakti will be lost. And Guru Maharaj said, we saw that happen. Also, Srila Bhagavad Maharaj, he used to tell the disciples, I was the only one who went to school and survived. It means we did not become a materialist. Why? The only reason this does is once again in the service of Hari Guru Vaishnava. The Buddha said, we have also seen in his life, there was one brahmachari who came to the mat who was very much fond of reading Sanskrit to Brahma. Then when he went to the Sanskrit toll, he never came back. From there he married, had children, and doing his business. Therefore, when we come to the mat, whatever education we come with, that is more than enough. We will, just by hearing and serving the Vaishnavas, all type of tapagyan, all knowledge of Krishna's powers, his energies, will automatically come to us by the process of hearing, and also by serving Vaishnavas, we will also achieve the great goal of Prema Bhakti.
Sri Brihad Bhagavatamrita. इसके पहले गोपियां श्री सुखदेव गोस्वामी जी गोपियों के माध्यम से बतला रहे हैं, ओह ब्रज का एक हिरण, ब्रज की हिरणी में धन्य है, गायें धन्य है, उनके बछड़े धन्य है, ओ यहाँ के जो पक्षी है वो मुनि है, वो भक्ति की डाल पर बैठकर ध्यान लगा करके कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं मौन होकर के है। और नदियां अमृत कमल के उपहारों से लहरों के द्वारा कृष्ण के चरणों में अर्पित करती, पहले तो वो अपनी धाराओं से कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन करती हैं और कृष्ण निरपेक्ष रहते हैं कि उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करती हैं। आकाश के मेघ उन पर छाया कर देते हैं और शीतल शीतल बूंदे टपका देते हैं। और उनसे श्रेष्ठ ये पुलिंदी कन्याएं हैं, भृंगी और न जाने क्या नाम, वो श्रेष्ठ है। इस तरह से वर्णन करते 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 फिर वर्णन करने लगे, वो उनसे भी श्रेष्ठ सखा है जो सब समय कृष्ण के साथ रहते हैं, जो हजारों वर्ष यज्ञ करके तपस्या करके अपने निर्मल मन को निर्मल बना देते, मन से भी कृष्ण के चरणों की का ध्यान में भी नहीं कर पाते, और वे ब्रज के बालकों के साथ में खेल धोल ये सब लोट फोट कर रहे हैं, कितना इनका सौभाग्य है। फिर कहते हैं, ओहो जो जन्म जन्मों जन्मों तक जम नियम आदि कष्टपूर्ण साधन किया और उसके फल से चित्त को किसी प्रकार से स्थिर किया, ऐसे योगी भी भगवान के चरणों की एक धूलि का कण भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे योगी लोग भी। और वही भगवान बजेंद्रनंदन स्वयं जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होकर के उनसे लड़फिट रहे हैं, उनके साथ में खेल करते हैं, इन ब्रज बालकों का कैसा सौभाग्य है। अब यहां पर सख्य भाव में वर्णन करने लगे, इन गोप बालकों के साथ में बिहार, जो बिहार के की तो बात ही क्या, दर्शन मात्र जो इनका साक्षात दर्शन करते हैं, बड़े बड़े योगी लोग योग में भी जिनके मन को जिनके चरण धूलि की चिंता नहीं करते, ध्यान नहीं कर पाते, और ये ब्रज के बालक के संबंध में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ओह ये धन्य है, ब्रज के बाद इन लीलाओं का क्यों वर्णन कर रहे हैं? जिसके हृदय में जिस रस के प्रति लोभ होगा या हृदय में उसका स्वरूपगत भाव होगा, वह इन इन लीलाओं को वात्सल्य दशरस वात्सल्य रस मधुर रस उन लीलाओं का वर्णन सुन करके उसके हृदय में लोभ उत्पन्न होगा। इसलिए और जिनको कुछ लोभ है उनका लोभ पुष्ट होगा, इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे हैं। क्वचित पल्लव तल्पेश निजुद्धाश्रमकर्षित वृक्ष मूलाश्रय शीते गोपोत्संगोप बरह। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तब स्थान स्थान पर बड़ी विचित्र लीलाएं सखाओं के साथ में करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उसी का वर्णन करते हैं। किसी समय कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में युद्ध करते करते थक जाते हैं, जिन्होंने अगासुर बकासुर को कंस को बात की बात में सेकंड भर में मार दिया, और ये उन सखाओं के साथ में युद्ध करते समय कुश्ती लड़ते समय कभी सिद्धार्थ इनको नीचे ले जाता है, कभी ये ऊपर आते हैं, कभी वो हारते हैं, कभी ये बराबरी पर छूटते हैं। उस कुश्ती के परिश्रम से थक जाते हैं जब, उस समय में जमुना के तट पर बड़ी सुंदर सुगंधित सुशीतल वायु आती है और उसी में कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठते हैं, कदम्ब में फूल लगते हैं, बड़े सुगंधित होते हैं। और दूसरी बात, राधा जी को तमाल वृक्ष प्रिय है और कृष्ण को कदम्ब वृक्ष। क्यों? कदम्ब जैसा ही उनका रंग है, इसलिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। पहले बिंदा देवी की बनाई हुई अथवा उन सखाओं के द्वारा बनाए हुए कोमल पत्ते, लाल लाल अभी कोमल पत्ते हैं और पुष्प हैं, जैसे गुलाब का फूल है उसकी केवल पाखुड़िया ले लिया और उसके बोटे को छोड़ दिया, ऐसे कमल फूल को लिया उसके पखुड़ियों को लेकर के और सुंदर सेज तैयारी की और कृष्ण उस पर सो गए। और सिद्धाम जो राधा जी का भैया है उसके गोदी में सिर रख करके सो रहे हैं और सब सखा क्या कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई इधर पैर दबा रहे हैं। सब बच्चों की, सब सखाओं की इच्छा है जो मैं ही कृष्ण के लिए फूलों की सेज बना और मैं इनके चरणों को संवाहन कर सकूं। इसलिए वे अलग अलग हजारों शैयाएं बनाते हैं और कृष्ण हजारों रूप धारण कर उन शैयाओं पर सोते हैं और सखा लोग एक साथ तो अकेले कृष्ण के चरण को कैसे 5-10 आदमी पकड़ेंगे, इसलिए एक एक सखा को अवकाश देते हैं, सभी उनके चरणों को पलोटे। ऐसी ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं। इन सखाओं का कौन सौभाग्य वर्णन कर सकता है। पंचम वाहनम चक्षु, तो उनके चरणों को दबाते हैं साक्षात रूप से। लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य नहीं होता, वो नारायण के चरणों को ही दबाए। इच्छा हुई रास में नहीं आ सके, ब्रज में नहीं आ सकती वो, और ये सखाएं ऐसे हैं। अपरे देजने संबीजते, उन्होंने कुमल कोमल पत्तों की एक बना रखा है पंखा और उसके गुच्छों से उनको पंखा कर रहे हैं। पंखे की जरूरत नहीं, आजकल तो ये पंखा हो गया। पहले माताएं अपने पुत्र को, स्त्रियां अपने पति को, बहन अपने भाई को हाथ से पंखा जितने जरूरत हो उसके अनुसार प्रेम से झुलाती थी। अब तो पंखा चलता है, जोर से चल रहा है तो जोर से ही चलेगा, धीरे नहीं होगा। इसमें तो प्रेम नहीं है, उस पंखे में प्रेम है, प्रेम से गुथा हुआ। आजकल ये सब चीज का अभाव हो रहा है। अन्य तदरूपिणी मनोज्ञानी महात्मन गायंती स्म महाराज स्नेह क्लीन धीय सने। और कुछ गोपालक बड़े स्नेह से द्रवित भूत हो करके हृदय से महात्मा श्री कृष्ण का आनंद वर्धन करने वाले और उस काल के युग मधुर चरित्रों का गान करते हैं। जैसे माँ यशोदा साथ ही साथ पद बंद करके और नए नए गानों को गाती हैं, ऐसे जैसे सखियां जय किते भिकम इत्यादि कीर्तन करती हैं, ऐसे सखा लोग कम नहीं है। वो साथ ही साथ छंद बंद करके कृष्ण का धीरे धीरे गान करते हैं और कृष्ण को सुलाते हैं। अब यहां पर सखाओं का सख्त रस वर्णन शेष करके अब बतला रहे हैं। नंदा की मकरो से ब्रह्मन से एव महोदय जसोदा वा महाभागा पपौ जस्सा स्तनम हरि। अहो आश्चर्य से कह रहे हैं नंदा की परीक्षित जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मन सुखदेव गोस्वामी जी, महाराज अथवा नंद बाबा ने क्या ऐसा कोई तपस्या अथवा दान पुण्य तीर्थ में स्नान न जाने क्या किया था जिससे कि नंद बाबा कहते हमारे पैर की जूती लियो तो सिर पर रख करके ले आते हैं और कृष्ण को आदेश देते हैं, कृष्ण को गोदी में लेकर के लाड़ प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, किसको? परब्रह्म जो नारायण के भी अंशी हैं, ऐसे कृष्ण के ये गोदी में लेकर के प्यार करते हैं। जसोदा वा महाभागा और जसोदा जो महाभागा है, ओहो क्या उन्होंने किया था कि कृष्ण जो परब्रह्म है उनको अपना स्तन दान करते थे, दूध पिलाती थी स्तन का और कृष्ण की भूख कभी नहीं और तृप्त हो करके और पान करते थे और पान करते थे। कौन सा तपस्या किया? उन्होंने बतलाया था दौड़ और धरा ने तपस्या करके वो पाए, नहीं ये बात नहीं है, ये तो साधारणों को ठगने के लिए बातें हैं। दौड़ और धरा ने तपस्या की और तपस्या करके जब उनकी सिद्धि हो गई, ब्रह्मा जी ने जब उनको वर दिए तो नंद और बाबा ने मिलित होकर वात्सल्य रस का आस्वादन किया। जब लीला समाप्त हुई तो वो दोनों धरा अपना स्वर्ग लोक में चले गए। तो इस प्रकार से जसोदा मैया नंद बाबा ने क्या किया इसका वर्णन कर रहे हैं। आज यहीं तक रहे, कल भी विश्राम है तो भी सवेरे कथा होगी, शाम को भी कथा होगी और परसों हम लोग चरण पहाड़ी इत्यादि स्थानों में खदीर बन में हम लोग जाएंगे।
Continuing Sri Sanatana Goswami's Supriyan Bhagavatam Gita. Yesterday we heard how the deer are fortunate. The cows are fortunate. The birds are fortunate. And sitting on the branch of Bhakti, those birds are actually great rishis and mudis. Hearing the sound of Krishna's flute, they have stopped their chirping and have become silent. The rivers, by their arms in the form of waves, offer flowers and embrace the chest of Krishna. But being neglected by him, they come to the feet. The clouds offer shade and cooling rainfall in the form of tears. But superior to them are the pulindigas. But superior to the pulindis are the friends of Krishna, the suckers of Krishna, because they are always with him. Therefore, last night we heard, Itam Satam Brahma Sukham Chukutya Dasyat Kadinam Paradevata. Even the yogis, after thousands of years, are performing sacrificial yajna. With their purified mind, even they cannot think of the feet of Krishna. But these coward boys are always with Krishna directly. For thousands of years, yogis perform austerities from the different branches of yoga, like yama and niyama. Birth after birth, they endeavor. Their intelligence becomes fixed, but still they cannot catch one speck of dust from the feet of Sri Krishna. But the coward boys are playing directly with those same lotus feet. How fortunate they are, Sukadeva Goswami is describing. What to speak of? Playing with the Krishna, the yogi can even meditate upon him. Therefore, the question may arise, then why is Sukadeva Goswami describing such a pastime? By describing the sweetness of Sakya Ras, friendship mood, Vatsali Ras, parental mood, and Madhuri Ras, conjugal mood, by hearing the sweetness of these pastimes, one may develop a greed to also enter into those pastimes and serve accordingly. Never the cowboys are moving place to place and performing wonderful leelas. One time, Sri Krishna was wrestling with the cowboys, especially Sri Ram, and he felt tired. That same Sri Krishna who killed huge demons like Agasura and Bakasura in less than a second, by wrestling with Sri Ram, he became exhausted. Sometimes he would defeat Sri Ram, sometimes he was defeated by Sri Ram. Therefore Krishna went to the bank of the Yamuna and a very cool, sweet breeze was blowing there. And Krishna took rest under one Kadamba tree. Why? Because that is the color of Srimati Radhika. And Srimati Radhika, she always rests under tamal trees because that is the complexion of Sri Krishna. The Kadamba tree had a very sweet smell. And Brinda, all the coward boys, had made a very soft bed for Krishna, composed of taking the petals off the flowers, removing the stems and covering it with a soft cloth. Krishna would rest his head on the lap of Sri Ram, and other coward boys would massage the feet. So there are millions of coward boys that all want to perform the service of making the bed for Krishna and massaging his feet. Therefore, it's arranged by Yogamaya that thousands of millions of suckers make thousands of beds, and Krishna accepts thousands of forms and takes and lies on those beds, and each coward boy gets a chance to personally massage Krishna. Therefore, those suckers are even more fortunate than Lakshmi. Lakshmi is not so fortunate. She can only catch hold of the feet of Narayana, but she cannot enter Rasamandal. She cannot touch the feet of Krishna like the coward boys. Therefore, Buddha says, previously, who used to do by hand? The mother would fan the son by hand, the sister would fan the brother, the wife would fan the husband, and nowadays, press the AC button, and walk. There is no problem now. All these things are being covered now. Therefore, the coward boys would take branches, and holding the stems of the branches, they would fan Krishna. They would also sing for his enjoyment. Madhya Soda Singh is Govinda Damo Dharmada Gati. The Gopi sang, Gopi Geet, etc. But the Sakas are not less than them. Singing in a very soft, sweet way, Krishna falls asleep. Therefore, Sukadeva Goswami here completes the description of Sakya Ras. Then he describes the good fortune of Nanda Yasoda, the servant mission of Vatsali Ras. Nanda Kinkaro, Ramana, Saitiva Mahadaya, Yasodava Mahabhaga, Papa Yasam Samadhi. It is asked, what austerities did Nanda Baba perform? What holy places did he take bath in? What mantra did he chant? Then he can say to Krishna, hey, Kalua, bring my shoes. And Krishna takes the shoes on his head and comes towards Krishna. Then Krishna takes Nanda Baba takes Krishna on his lap and gives him so much affection, smelling the top of his head. Who is that Krishna? He is Parabrahma, the absolute truth. Bhagavan Sivaraya is only a part of him. But Madhyasoda is more fortunate than even Nanda Baba. Because she feeds milk directly from her breast to Sri Krishna, whose thirst is never exhausted, therefore he drinks more and more. What austerities did she do? Even Bhagavatam said that Jodha and Dara performed austerities to please Lord Brahma, therefore they achieved the benediction of taking the position of Nanda Yasoda. But actually this is just what she did to common persons. Actually, Jodha and Dara, being blessed by Lord Brahma, entered the body of Nanda Yasoda. And in the body of Nanda Yasoda they tasted Vatsali Ras, and after the completion of Krishna's pastime, they went to get back to the heavenly planets. Tomorrow is a rest day, but there will be guitar morning and evening as usual.